हिंदी युग्म की ओर से मैं मृदुल कीर्ति कवि सम्मेलन के सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। कवि सम्मेलन के पांचवें अंक के प्रति उल्लास कुछ बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण चौथे अंक में आपकी दी हुई सराहनाएं हैं, जो इस कवि सम्मेलन की संवेदनशीलता को प्रमाणित करती हैं। अतः सभी भाव प्रवण श्रोताओं को पुनः साधुवाद प्रेषित करती हूँ। वास्तव में कवि सम्मेलन एक भावनात्मक पुष्प है, जिसकी पंखुड़ियां कविगण होते हैं तो सुरभि उनके भाव हैं। आज ये भाव सुमन सृष्टि रचयिता को सर्वप्रथम अर्पित करते हैं। हमारी जीवन सुरभि पर उसी परब्रह्म परमात्मा का ही नियंत्रण है। हमारी जीवन सुरभि परमेश परमात्मा ही तो है। हमारे स्पंदन का एक सिरा उसके हाथ में है तो दूसरा सिरा हमारे हृदय में है। वही तो हमारी धड़कनों का मालिक है। जगत का आधार और मूल कारण भी वही है, वही जगत का उपादान और निमित्त भी है। पर ब्रह्म को, उस आद्या शक्ति को, जिसका संबल अविराम सबकी ही शिराओं में प्रवाहित है, उसे अपनी अकिंचनता, अनन्यता एवं समर्पण से बड़ी और क्या पूजा दूं? सुनिए, यही भाव इसी अनन्यता को समर्पित कर रही हैं शन्नू अग्रवाल जी लंदन से। लंदन से शन्नू अग्रवाल जी जीवन सुरभि शीर्षक से मुखरित हैं। तुम सागर में लहर दीन सी, तुम विशाल में दिखूं मीन सी, तुम हो सकल विश्व के धारक, मैं केवल नन्हा सा कण हूँ, तुम हो सकल इच्छाओं के पूरक, मैं केवल नन्हा सा प्रण हूँ, तुम शाश्वत सौंदर्य सृष्टि के, मैं बस उसका एक चिन्ह हूँ। इतने सुंदर विचार शन्नू जी, आप आएं और आप जीवन सुरभि का विकिरण करें। शन्नू अग्रवाल लंदन से।
जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ उसके भाव आत्मा से परमात्मा के लिए हैं। ये शरीर माँ बाप की देन है, तो आत्मा परमात्मा का अंश है। जो काया को सजीव रखती है, उसे उसके अस्तित्व का भी एहसास दिलाती है, लेकिन काया छोड़ने के बाद आत्मा को परमात्मा में ही विलीन हो जाना पड़ता है, जिसके बिना उसका कोई तथ्य ही नहीं। उसी पर आधारित भाव है। शीर्षक है जीवन सुरभि। कैसे मैं तुम बिन रह पाऊं, मेरी जीवन सुरभि तुम्ही हो, मैं बीड़ा तुम सुर हो उसके, मैं श्रद्धा तुम भाव हृदय के, तुम सागर में लहर दीन सी, तुम विशाल में दिखूं मीन सी, कैसे मैं तुम बिन रह पाऊं, यदि छोड़ तुम्हें दूंगी दो बल को, कैसे मैं तुम बिन रह पाऊं, मेरी जीवन सुरभि तुम्ही हो, तुम हो मेरे सूर्य, मैं हूँ केवल एक किरण सी, तुम हो नीला आकाश, तो मैं केवल हूँ छाया उसकी, तुम जग का विशाल प्रांगण हो, मैं उसका नन्हा कोना हूँ, तुम हो उसकी गौरव गरिमा, मैं दिखती नन्हा बौना हूँ, तुम में रही लीन सदा हूँ, नहीं छोड़ सकती मैं तुमको, कैसे मैं तुम बिन रह पाऊँ, मेरी जीवन सुरभि तुम्ही हो, तुम हो शकल विश्व, मैं केवल नन्हा सा कण हूँ, तुम सब इच्छाओं के पूरक, मैं केवल नन्हा सा प्रण हूँ, तुम हो युग के चरण, मैं केवल अनुगामी उसकी, तुम प्रतिभा हो काव्य जगत की, मैं केवल हूँ साधक उसकी, तुम ही साथ दे सके यदि ना, कौन चलाएगा फिर जग को, कैसे मैं तुम बिन रह पाऊं, मेरी जीवन सुरभि तुम ही हो, तुम हो मेरे भ्रमर, मैं छोटी सी एक कली हूँ, तुम मेरी सुगंध हो, मैं पी करके उसे पली हूँ, तुम चित्रकार हो, मैं एक तूलिका, तुम विविध रंग, मैं कोना कागज का, बंद करोगे यदि भरना रंग, आमंत्रण दोगे क्या प्रलय को, कैसे मैं तुम बिन रह पाऊं, मेरी जीवन सुरभि तुम ही हो, तुम सशक्त मैं सदा ही अबला, तुम असीम मैं एक बुलबुला, मैं माटी तुम कंचन आभा, मैं नश्वर हूँ तुम काशी काबा, मेरा क्या अस्तित्व बताओ, पृथक अगर कर दोगे मुझको, कैसे मैं तुम बिन रह पाऊं, मेरी जीवन सुरभि तुम ही हो। तुम शाश्वत सौंदर्य, मैं धूमिल सा एक चिन्ह हूँ, मेरी ना पहचान है कोई, कुछ भी नहीं तुम्हारे बिन हूँ। तुम धरती का आंचल हो, मैं बस उसका एक तार हूँ, तुम जो पहने विविध हार हो, उनमें का मैं क्षुद्र माल हूँ। तुम बिन मेरी क्या बिसात है, मुझे नहीं यदि तुम अपनाओ। कैसे मैं तुम बिन रह पाऊं, मेरी जीवन सुरभि तुम ही हो। तुम हो देवालय, मैं देहरी हूँ, तुम परम पूज्य और मैं चेरी हूँ, मैं अस्थिर विश्वास तुम ही हो, मैं कंचन घट स्वास तुम ही हो। तुम ही यदि विलीन हो गए, कैसे सोचूंगी जीवन को, कैसे मैं तुम बिन रह पाऊं, मेरी जीवन सुरभि तुम ही हो।
अभी आपने शन्नो जी की ईश्वर के प्रति समर्पित भाव की बहुत सुंदर रचना सुनी। सृष्टा की संरचना में द्वैत भाव की प्रधानता है, जैसे दिन रात, लाभ हानि, यश अपयश, जन्म मृत्यु, सुख दुख, हार जीत, मिलन वियोग। कौन है ऐसा जिसने जन्म लिया हो पर इन गलियारों से ना निकला हो। सभी की जीवन यात्रा इन्हीं गलियारों में से होकर पूरी होती है, यही जीवन के सोपान हैं, अंग हैं। वियोग का दर्शन बड़ा ही गहरा है। कृष्ण के वियोग में सखियों का विरह वर्णन आध्यात्मिक विरह वर्णन है। काव्य जगत में जाएं तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, विरह का मूल स्रोत वियोग बताया है। विरह का दार्शनिक और सत्य परक पक्ष यदि देखना है तो यह रचना जो अब आप सुनने जा रहे हैं सदा ही मुख पृष्ठ पर रहेगी। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, जिसे प्रवासी के गीत पुस्तक से लिया गया है, जो पंडित नरेंद्र शर्मा जी द्वारा रचित है और उनकी पुत्री श्रीमती लावण्या शाह द्वारा पठित है। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, आज से हम तुम गिनेंगे एक ही नभ के सितारे, दूर होंगे पर सदा को जो नदी के दो किनारे, कल्पना के मृदुल कर से मिटी किसकी भाग्य रेखा। आइए सुनते हैं लावण्या जी से आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। लावण्या जी आप आए और इस बहुत ही अच्छी रचना को भावनात्मक रूप से जो इतना अच्छा आपने, इतनी अच्छी है ये रचना कि मैं खुद ही भाव विभोर हो रही हूँ, और मैं श्रोताओं से निवेदन करती हूँ कि इसके दर्शन में एक बार डूब कर देखें। आइए चलते हैं, लावण्या जी आप आएं, धन्यवाद।
कविता का शीर्षक है आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, जिसे प्रवासी के गीत पुस्तक से लिया गया है, जो पंडित नरेंद्र शर्मा की युवा अवस्था में लिखी गई पुस्तक है। सुनिए। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, आज से दो प्रेम योगी अब वियोगी ही रहेंगे, आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। आएगा मधुमास फिर भी आएगी श्यामल घटा घिर, आंख भर कर देख लो अब मैं न आऊंगा कभी फिर, प्राण तन से बिछुड़ कर कैसे रहेंगे, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। अब न रोना व्यर्थ होगा हर घड़ी आंसू बहाना, आज से अपने वियोगी हृदय को हंसना सिखाना, अब आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, न हंसने के लिए हम तुम मिलेंगे, आज से हम तुम गिनेंगे एक ही नभ के सितारे, दूर होंगे पर सदा को जो नदी के दो किनारे, सिंधु तट पर भी न जो दो मिल सकेंगे, आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। तट नदी के भग्न उर के दो विभागों के सदृश हैं, चीर जिनको विश्व की गति बह रही है वे विवश हैं, आज अथ इति पर्ण पथ में मिल सकेंगे, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। यदि मुझे उस पार के भी मिलन का विश्वास होता, सत्य कहता हूँ न मैं असहाय या निरुपाय होता, जानता हूँ अब न हम तुम मिल सकेंगे, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। आज तक किसका हुआ सच स्वप्न, जिसने स्वप्न देखा। कल्पना के मृदुल कर से मिटी किसकी भाग्य रेखा। अब कहाँ संभव कि हम फिर मिल सकेंगे, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। फिर कवि कहते हैं, आह अंतिम रात वह बैठी रही तुम पास मेरे, शीश कंधे पर धरे घन कुंतलों से गात घेरे, क्षीण स्वर में कहा था अब कब मिलेंगे, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। कब मिलेंगे पूछता जब विश्व से मैं विरह कातर, कब मिलेंगे गूंजते प्रतिध्वनि निनादित व्योम सागर, कब मिलेंगे प्रश्न उत्तर कब मिलेंगे, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे। धन्यवाद।
अकेले रह जाना शायद प्रकृति की सबसे बड़ी सजा है। इसमें यहाँ जो जीवित दिखता है वो जीते जी मर जाता है, जो चला जाता है वो यादों में हर पल जीवित रहता है। पर विधि का विधान में जो परिभाषित होता है वो है कि किसका सब कुछ रहा यथावत, सबका सब कुछ हुआ कथावत, काल गाल सर्वस्व समागत, किंचन हो या दिव्य तथागत, किसका सब कुछ रहा यथावत। वियोग का दुख और उनकी यादें बड़ी ही मर्मांतक होती हैं। जो दुख हम भोग चुके हैं यादें बार बार उनको भुगवाती हैं। विषाद, व्याकुलता, घुटन, उदासी, आंसू, बस यही तो दे पाती हैं यादें। सुखद हों या दुखद, दुख ही देती हैं। इसीलिए संत कह गए हैं कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधले। ये संस्कारों को धूमिल नहीं होने देती, पुराने संस्कारों को और गहरा करती रहती हैं। हम हैं कि उन्हें नित नित्य जिंदा करते रहते हैं, उन्हें अतीत होने ही नहीं देते। उन बिंदुओं को जिंदा करना चाहते हैं जो जिंदा हो ही नहीं सकती, और इस चिंतन में हम अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। वर्तमान में जीने की आदत भी भूल जाते हैं। जो पल जिंदा हैं उन्हें भी मारने की भावनात्मक चेष्टा करते हैं और अपने वर्तमान की डोर अतीत को दे देते हैं। लेकिन मन फिर भी बार बार यही कहता है, तुम लौट आओ, तुम लौट आओ। अब तुम नहीं कहां हम जाते, अब तुम नहीं कहां हम जाते। याद आए यदि सदगुण उनके तो मेरे बंधन बन जाते, कटुता जिस क्षण हुई स्फुरित क्षण मेरे क्रंदन बन जाते। अतः पुनः तुम तक आने हित पंखों में पत्थर बंध जाते। अब तुम नहीं कहां हम जाते, अब तुम लौट आओ। इस विचार को पारुल जी अपने एक गीत काव्य में कितने सुंदर शब्दों में प्रस्तुत कर रही हैं, और मैं पारुल जी का आवाहन करती हूँ कि वो अपनी भावना गीत काव्य में हम सब तक ले चलें, हमें भी सुनाएं। पारुल जी, आपका आवाहन।
सभी सुनने वालों और मित्रों को नमस्कार। कविता का शीर्षक है तुम लौट आना।
अलसाई धूप खिल मुरझाए उस पहर पूर्व तुम लौट आना, अलसाई धूप खिल मुरझाए उस पहर पूर्व तुम लौट आना। सब कहा सुना बिसरा देना, वो क्लेश भूल तुम लौट आना, तुम लौट आना। अलसाई धूप खिल मुरझाए उस पहर पूर्व तुम लौट आना। आवेश रहा होगा किंचित जो उस क्षण उपजा बैर कठिन, आवेश रहा होगा किंचित जो शिक्षण उपजा बैर कठिन। अब मान ढला अपमान ढला, ओ अहम भूल तुम लौटाना तुम लौटाना, अलसाई धूप खिल मुरझाए उस पहर पूर्व तुम लौटाना। कार्तिक की शीतल अंगनाई तुम चांद चौथ का रहे सदा, कार्तिक की शीतल अंगनाई तुम चांद चौथ का रहे सदा। उजले कलंक स्वीकार मुझे वो द्वेष भूल तुम लौटाना, अलसाई धूप खिल मुरझाए उस पहर पूर्व तुम लौटाना। सुधियों के सोने चौरे पर आशानित दीप जलाती है, सुधियों के सोने चौरे पर आशानित दीप जलाती है। ड्योढ़ी की सांकल खोल प्रिय वो पीर भूल तुम लौटाना, तुम लौटाना। अलसाई धूप खिल मुरझाए उस पहर पूर्व तुम लौटाना।
पारुल जी के इस काव्य गीत ने सभी के अंतस को छुआ होगा, इतना माधुर्यपूर्ण, इतनी पीड़ा में सजीवता लाते हुए बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस काव्य गीत को प्रस्तुत किया। पारुल जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब मैं आपका परिचय कराती हूँ डॉक्टर श्रीमती अजीत गुप्ता से, जो भारत के राजस्थान प्रांत के उदयपुर शहर से हैं। आपने आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर से शिक्षा प्राप्त कर वहीं चिकित्सा और अध्यापन किया। आप राजस्थान साहित्य अकादमी की अध्यक्ष हैं और मधुमति मासिक पत्रिका की संपादक भी हैं। इनके संपादकीय तो ऐसे सजीव और सटीक साहित्यिक निधि के समान हैं कि उन्हें संजो के रखने का मन करता है, जिन्हें मैंने पढ़ा है। 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हैं। व्यंग, निबंध, काव्य, लघु कथा, कहानी, उपन्यास, साहित्य की हर विधा पर पूर्ण स्वामित्व पाया है। साहित्य जगत की एक ऐसी प्रतिष्ठित विभूति जिन्हें हिंद युग में पाकर हम स्वयं में कुछ इतराने से लगे हैं। हमारा गौरव है कि हम इनकी रचना को सुन पा रहे हैं। हिंद युग के इस आमंत्रण में उन्होंने जो कविता चुनी है वो एक बहुत ही मार्मिक ममत्वमय रचना है, जो मर्म से उपजी है, मर्म को ही छूती है और मर्म में ही समागत होकर हमारे आपके मर्म में बस जाती है, क्योंकि यह रचना बहुतों की पीड़ा सहचरी है, उनकी व्यक्तिगत नहीं। मेरा मन कर रहा है कि मैं जितना उनको जानती हूँ कुछ बोलूं। पांखुरियों का वजन आंकना आ जाए और सुगंध से हल्का तनमन हो जाए, तभी आत्मवत सकल प्राणियों में आवर्तन होता है, तभी आचरण में पूजा का शुभ आवर्तन होता है, तभी अजित सी अजित विधा का शुभ संवर्धन होता है। इनका जो कथ्य विषय है वो एक ऐसी बात को छूता है जैसे एक लहजा होता है जिसमें बिना बोले ही अंतस आईने सा उतर जाता है। जैसे आपका बेटा आपसे कहे, मुझे अपने सानिध्य सुख का अवसर दे माँ, या कुछ दिनों के लिए मेरे घर मेरे पास आ जाओ। कुछ दिनों के लिए भी चुपता है, मेरे घर आ जाओ, इसमें अहम मान्यता झलकती है, मेरे पास आ जाओ। माँ का उत्तर होता है कि तू तो सदा मेरे पास है, मेरा घर तेरा है, और कुछ दिनों के लिए क्या, तू तो सदा मेरे पास रहा है। दोनों में ही अंतस कहीं ना कहीं झलकता है, एक में कुछ जुड़ता है तो दूसरे में कुछ दरकता है, एक में अहम मान्यता है तो दूसरे में समर्पण है। इसी बात को, इसी तथ्य को, इसी हृदय स्पर्शी भाव को अजीत जी से सुनते हैं, जहाँ ममत्व की विजय होती है और अहम मान्यता बौनी हो जाती है, वो सब कुछ भुलाकर, यद्यपि कुछ दरका है लेकिन उसे भी भुलाकर दौड़ पड़ती हैं और पूछती हैं, तेरा क्या क्या लेकर आऊं मैं भारत से। सुनते हैं, छोड़ गया तू जिस खुशबू को वो भरकर खुद ही आ जाऊं, छूटा बचपन देने आऊं देकर फिर वापस आ जाऊं। उनसे ही सुनते हैं। अजीत जी आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अपनी भावनाओं से हमें भी अवगत कराएं, और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अजीत जी भारत उदयपुर से।
नमस्कार, मैं अजीत गुप्ता उदयपुर राजस्थान से। आज भारत की लाखों माएं एक दर्द लेकर जी रही हैं, बेटा विदेश में है और माँ भारत में। बेटा कहता है कि मेरे साथ आकर रहो माँ, लेकिन माँ सुनना चाहती है कि बेटा कहे माँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यही संस्कृति का अंतर माँ के कदमों को रोक लेता है। लेकिन कब तक, लेकिन कब तक ममता और प्रेम को अभिमान की बेड़ियों से बांधा जा सकता है। माँ तोड़ देती है सारे ही मन के बंधन और एक दिन चल ही पड़ती है बेटे से मिलने विदेश। क्या लेकर जाऊं बेटे के लिए, घर की यादों का कोई क्षण या फिर केवल अपना मन। मैंने अपनी बात कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहने का प्रयास किया है, सुनिए। तेरे मन को खुश करने मिस कुछ लाऊं या मैं आ जाऊं, तेरे मन को खुश करने मिस कुछ लाऊं या मैं आ जाऊं, भारत की यादें लाऊं या दिल माँ का लेके आ जाऊं, तेरे मन को खुश करने मिस कुछ लाऊं या मैं आ जाऊं, कमरे का कोना लाऊं या कमरे का कोना लाऊं या यादों के बिस्तर ले आऊं, छोड़ गया तू जिस खुशबू को वो भर के खुद ही आ जाऊं, छोड़ गया तू जिस खुशबू को वो भर के खुद ही आ जाऊं, कुछ लाऊं या मैं आ जाऊं। एक हंसी बिखरी है घर में, एक हंसी बिखरी है घर में, बंद करूं कैसे बक्से में, एक हंसी बिखरी है घर में, बंद करूं कैसे बक्से में, पग पग पे चिपके चिन्हों को, पग पग पे चिपके चिन्हों को, बांध बूंद कर मैं आ जाऊं, कुछ लाऊं या मैं आ जाऊं, छूटा बचपन देने आऊं, छूटा बचपन देने आऊं देकर फिर वापस आ जाऊं, छूटा बचपन देने आऊं देकर फिर वापस आ जाऊं, तेरे आंगन की किलकारी, तेरे आंगन की किलकारी कैसे उसको मैं पा जाऊं, कुछ लाऊं या मैं आ जाऊं। खाली हाथ लिए आऊंगी, खाली हाथ लिए आऊंगी, कमरा कोना खुशबू बचपन, खाली हाथ लिए आऊंगी, कमरा कोना खुशबू बचपन, ये तो केवल मेरी पूंजी। कमरा कोना खुशबू बचपन ये तो केवल मेरी पूंजी, कैसे इनको मैं ला पाऊं, कुछ लाऊं या मैं आ जाऊं। तेरी आंखों में देखी है, तेरी आंखों में देखी है इंतजार की वो बेचैनी, दोनों हाथों को लेकर मैं मन करता दौड़ी आ जाऊं, दोनों हाथों को लेकर मैं मन करता दौड़ी आ जाऊं, तेरे मन को खुश करने मिस कुछ लाऊं या मैं आ जाऊं, भारत की यादें लाऊं या दिल माँ का लेके आ जाऊं, दिल माँ का लेके आ जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
अभी आपने अजीत जी की ये भावपूर्ण रचना सुनी। डॉक्टर अजीत जी ने जिस बिंदु को उजागर किया वो शायद बहुत लोगों को पसंद आया होगा। माता पिता मेरे पास रहते हैं, ये शब्दावली ही दोषपूर्ण है। मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, ये संस्कार और गौरवपूर्ण भाषा है। शायद वो जो लोग भूल चुके हैं उन्हें सिखाने का एक संकेत भर है। अब हम आपका परिचय कराते हैं। शेफाली जी की कहाँ से हैं ये? इन्होंने बिल्कुल भी अपना परिचय नहीं दिया, ना किस देश से हैं या किस प्रांत से हैं। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कवियों से कि वो कृपया थोड़ा सा जरूर लिखा करें अपने परिचय के विषय में। लेकिन इनकी रचना बहुत सुंदर है। बचपन के खेल खेल में की गई अनुभूतियों की यथार्थ से साम्यता अनुभव की है इन्होंने। खेल खेल में वो परछाइयों की सरसराहट ही तो है यह जीवन, और है ही क्या। शेफाली जी, आप यथार्थ और भावनाओं से जो समन्वय आपने अनुभव किया है उस समन्वय जगत में हमें भी ले चलें, और मैं आपका आवाहन करती हूँ कि आप कृपया अपनी रचना पढ़ें। शेफाली जी,
ये जादू ही तो है कि बचपन का कोई खेल जो मन के साथ खेलती आई वो जीवन में उतर आया। छुटपन की खिलखिलाहट और लड़कपन का उन्माद, धीर गंभीर मुस्कुराहट पर हौले से लुढ़क आया। आंखों की भाषा सुनने लगा कोई, जुबा की खामोशी को किसी ने गले लगाया। हाँ, वो बचपन का ही तो कोई खेल था जब आंख में जौली के खेल में आंखों पर पट्टी बंधी रहती और आसपास होती सरसराहट की ओर दौड़ जाती और पकड़ने की कोशिश करती थी हाथों से बच निकलने वाले सायों को। कौन जानता था आज वही खेल दोबारा खेलूंगी, खुली आंखों से कोई सपना बुनूंगी, सपने की कोई छवि मन में गढ़ूंगी और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाऊंगी और सपने का स्पर्श पा सकूंगी। एक स्पर्श जो मुझे मुक्त कर जाए जीवन की दृश्य सीमाओं से और एक अदृश्य असीमित लोक में स्थान दिला दे। जैसे कोई कहता है स्वर्ग, कोई कहता है अलौकिक स्थल, और मैं कहती हूँ जादू जो मेरे बाल मन की कोमल कल्पनाओं में उतर आया। मेरे बचपन ने खेला कोई खेल और लड़कपन ने गले लगाया। खोजती रही आंखें उस अदृश्य से सपने को, और उस सपने ने खुद मुझे ये किस्सा सुनाया कि वो कोई खेल नहीं था जो तुम खेल रही थी, वो तो उसी सपने की डोर थी जो तुम बुन रही थी। सपने ने स्वरूप पा लिया, सरसराहट की ओर दौड़ पड़ो और दबोच लो उसे। आज ये खेल पूरा हुआ, उतार फेंको आंखों से इस लोक की पट्टी, देखो तुम्हारी कल्पना ने कितना सुंदर रूप है पाया। अब तुम जादू कहो या कहो सपना, तुम्हारी प्यास ने आज ये रंग दिखलाया कि पूरी हुई तलाश और तुमने सपने का स्पर्श पाया। अब जी लो चाहो तो इसे इसी लोक में या अलौकिक कहकर ब्रह्मांड में घूमाओ। सारी सृष्टि तुम्हारी है, पूरी कायनात को तुमने पाया। सिर्फ तुमने, सिर्फ मैंने, सिर्फ हमने।
शेफाली जी, आपकी इतनी सुंदर रचना के लिए धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को भी रचना पसंद आई होगी। अब हम शीला सिंह जी वाराणसी से जो हैं, उनकी कविता का शीर्षक है जाइए लौट मत आइए। जीवन के प्रति का जो समीकरण है कि बार बार जीना मरना, जन्म लेना और फिर तस्वीर बन जाना, कि चौखटा लकड़ी का मकड़ी जाल में एक दिन टंग जाओगे दीवार में। इस बिंदु पर इनका बड़ा ही अच्छा और सजीव चित्रण है कि सांस सांस जीवन घट रीते और क्षण के विहग उड़े जाते हैं। पल पल बाट जो होते मधुमय, पतझर पात हुए जाते हैं। अनगिन बार बसंती चूनर धरती को विधना पहनाए, अनगिन सावन बरसे अनगिन काली घोर घटा गदराए। पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम मरणम भरमाए, और पुनरपि काल ग्रसन के भय से थर थर गात हुए जाते हैं, पतझर पात हुए जाते हैं। इसी भाव को शीला सिंह जी वाराणसी से जाइए लौट मत आइए शीर्षक से सुना रही हैं। शीला जी आप आए, धन्यवाद।
जाइए लौट मत आइए, तस्वीरों में सचकर सलीबों पर टंकर दूर होकर हमसे उनसे आप देवता हो गए। आदमी थे कितने करीब थे, कैसे कैसे नसीब थे, कितनी व्यथा की कथा हम कहें कैसे कैसे। आदमी से देवता बनना कहते हैं लोग कठिन है, नहीं कितना आसान सा है। चले जाइए जीवन पार, बन जाइए देव, सज जाइए घर की दीवारों पर, मुरझाए फूलों का हार, बहती आंखों का पानी, छोटा सा स्मृति का दिया लेकर पुजवाइए। जाइए लौट मत आइए, मोक्ष पाइए। बार बार जाना, दीवालों पर सजना, आंसू बहाना, तस्वीरों में बेबस ताकना, नहीं जाता मुझसे सहा। आदमी थे आप, आदमी ही रहिए, देवता बन चुप हो जाना पड़ता है, एक तरफा पुजवाना पड़ता है, और जीवित लोगों से बचकर अकेले चुपचाप मुस्कुराना पड़ता है।
अभी आपने शीला सिंह जी की बड़ी मार्मिक रचना सुनी, हर पल सजग रहो मेरे मनवा, कब है का था हो जाए, वर्तमान जो इस पल लगता अगले पल गाथा हो जाए। समय के प्रति जागरूकता को इंगित करते हुए की रचना बहुत अच्छी लगी। अगली रचना है शोभा महेंद्र जी फरीदाबाद भारत से। ऐसे पक्ष की बात कर रही हैं कि सामान्य जन बहुत कुछ होता रहता है, देखा देखा करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन कवि और संवेदित हृदय वहीं ठहर कर अपने चिंतन का विषय बना लेता है। चलिए सुनते हैं उनकी रचना, कवि तुम पागल हो।
नमस्कार, एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कवि तुम पागल हो। कवि तुम पागल हो, सड़क पर जाते हुए जब भी कोई भूखा नंगा दिख जाता है, हर समझदार आदमी बचकर निकल जाता है। सड़क पर जाते हुए जब भी कोई भूखा नंगा दिख जाता है, हर समझदार आदमी बचकर निकल जाता है। किसी के चेहरे पर भी कोई भाव नहीं आता है, और तुम आंखों में आंसू ले आते हो, और तुम आंखों में आंसू ले आते हो, जैसे पाप धोने को आया गंगाजल हो। कवि तुम पागल हो। जीवन की दौड़ में दौड़ते भागते लोगों में जब भी कोई गिर जाता है, उसे कोई नहीं उठाता है। जीवन की दौड़ में दौड़ते भागते लोगों में जब भी कोई गिर जाता है, उसे कोई नहीं उठाता है। जीतने वाले के गले में विजय हार पड़ जाता है, जीतने वाले के गले में विजय हार पड़ जाता है, हर देखने वाला तालियां बजाता है, पर तुम्हारी आंखों में गिरा हुआ ही ठहर जाता है, जैसे कोई बादल हो। कवि तुम पागल हो। मेहनत करने वाला जी जान लगाता है, किंतु बेईमान और चोर आगे निकल जाता है। मेहनत करने वाला जी जान लगाता है, किंतु बेईमान और चोर आगे निकल जाता है, और बुद्धिजीवी वर्ग पूरा सम्मान जताता है, और बुद्धिजीवी वर्ग पूरा सम्मान जताता है, अपने अपने संबंध बनाता है, पर तुम्हारी आंखों में तिरस्कार उतर आता है, जैसे वो कोई कातिल हो। कवि तुम पागल हो। सीधा सच्चा प्रेमी प्यार में मिट जाता है, सीधा सच्चा प्रेमी प्यार में मिट जाता है, और झूठे वादे करने वाला बाजी ले जाता है। सच्चा प्रेमी आंसू बहाता है, तब किसी को कुछ भी गलत नजर नहीं आता है, तब किसी को कुछ भी गलत नजर नहीं आता है, पर तुम्हारी आंखों में खून उतर आता है। उनका क्या कर लोगे, उनका क्या कर लोगे जिनका दिल दलदल हो। कवि तुम पागल हो। धर्म और नैतिकता की, धर्म और नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाला धर्म को धोखे की दुकान बनाता है, तब चिंतनशील समाज सादर शीश नवाता है। सहज में ही सब कुछ पचा जाता है और तुम्हारे भीतर एक उबाल सा आ जाता है, और तुम्हारे भीतर एक उबाल सा आ जाता है। लगता है तुमको क्यों चर्चा ये हर पल हो। कवि तुम पागल हो। कवि तुम पागल हो।
शोभा जी, बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी। बादली मन बहुत भटका, विषय के प्रासार में ब्रह्म अंतिम आसरा है, कुछ नहीं संसार में। है दबा अंगार दिल में और रग रग में धुआं, कंठ तक गहरी घुटन है, मन दुखी बरसे कहां। भावनात्मक जगत से थोड़ा आगे आए तो माया का जगत आता है, उसी जगत में हमें रमा द्विवेदी जी हैदराबाद से ले चलती हैं। और बताया है उन्होंने अपनी रचना में कि जो माया दिखती है उसके कई नकारात्मक पक्ष भी हैं। कितनों की भावनाओं को आहत करने के बाद ये स्वरूप माया का आया है। ये रचना उनके उन्हीं भावों को संवेदित और स्पंदित कर रही है। रमा द्विवेदी जी हैदराबाद से।
माया से तकते ताज भी, माया बदल दे ताज भी, माया से तकते ताज भी, माया बदल दे ताज भी, माया पल भर में बदल दे जिंदगी का साज भी, माया पल भर में बदल दे जिंदगी का साज भी, आकूत माया से ही देखो एक अजूबा बन गया, आकूत माया से ही देखो एक अजूबा बन गया, मौत दे दी कितनों को पर नाम फिर भी कर गया, मौत दे दी कितनों को पर नाम फिर भी कर गया, ताज की एक मीनार कितनी लाशों पर टिकी, ताज की मीनार कितनी लाशों पर टिकी, माया का यह मकबरा भी रक्त पी कर बन सकी, मुमताज का यह मकबरा भी रक्त पी कर बन सकी, माया की संगमरमर जमी पर, माया की संगमरमर जमी पर अश्रु जल दिखता नहीं, माया की संगमरमर जमी पर अश्रु जल दिखता नहीं, हर कोई है फिसल जाता कुछ रीढ़ पर टिकता नहीं, हर कोई है फिसल जाता कुछ रीढ़ पर टिकता नहीं, अश्रु तक बिक जाते हैं माया के दरबार में, अश्रु तक बिक जाते हैं माया के दरबार में, चीखों का कितना मूल्य है सांसों के व्यापार में, चीखों का कितना मूल्य है सांसों के व्यापार में, चीखों का कितना मूल्य है सांसों के व्यापार में, चीखों का कितना मूल्य है सांसों के व्यापार में।
अगली रचना भारत से, गाजियाबाद से कमल प्रीत जी की है, जिन्होंने थोड़े शब्दों में बहुत गरिमामय भाव व्यक्त किए हैं। आइए उनसे सुनते हैं। कमल प्रीत जी आप आए, धन्यवाद।
मेरी कविता का शीर्षक है आत्मबोध। स्वयं संयम के उस धूमिल क्षण से आज के इस कठोर धरातल तक आदर्शवादिता की मृग तृष्णा लिए काम क्रोध लोभ मोह एवं अहंकार पर अंकुश पा लेने की चेष्टा में आज के युग के सत्य को भी चुनौती देते हुए प्रसन्नता और मानसिक शांति के पीछे लगने वाली दौड़ न जाने कब किस तरह समाप्त होगी। मानना होगा अब तो अर्थ के अलावा भी किसी परम श्रेष्ठ आत्मा के निराकार अस्तित्व को शांति परम चरम आनंद की इच्छा है यदि चिंतातुर को मुक्ति साधना के लिए।
कमलप्रीत जी, आपकी रचनाओं के लिए धन्यवाद। अब मैं मीत जी का आवाहन करती हूँ जो कोलकाता से हैं। मीत जी, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, कृपया आए, धन्यवाद।
एक छोटी सी बात, न जाने क्या सोचकर इसका नाम दिया है चलो फिर से मुस्कुराए। जिस पल तुझको सब सौंप दिया, जिस पल तुझको सब सौंप दिया, खुद को खोकर सब कुछ पाया। जिस पल तुझको सब सौंप दिया, खुद को खोकर सब कुछ पाया, जीवन के सब बंधन टूटे, एक बंध कर ये तेरा बंधन। जिस पल तुझको सब सौंप दिया, खुद को खोकर सब कुछ पाया, जीवन के सब बंधन टूटे, एक बंध कर ये तेरा बंधन। तेरी आंखों से सखी कौन से बरसे थे उस दिन बादल, जीवन भर को जो सींच गए मेरा वजूद मेरा तन मन। तेरी आंखों से सखी कौन से बरसे थे उस दिन बादल, जीवन भर को जो सींच गए मेरा वजूद मेरा तन मन। ना जाने कितने जन्मों की थी प्यास बुझी जब एक पल में उंगली के पोरों से होठों को तुमने पिलाया था जीवन। ना जाने कितने जन्मों की थी प्यास बुझी जब एक पल में उंगली के पोरों से होठों को तुमने पिलाया था जीवन। तेरी जुल्फों की मस्त घटा में जब ये दुनिया भीगी थी, तेरी जुल्फों की मस्त घटा में जब ये दुनिया भीगी थी, सारी दुनिया थी कली कली, ऐसा महका था मन उपवन। ये सखी प्यार की बाजी है, ये सखी प्यार की बाजी है, इसमें न एक की जीत कभी। ये सखी प्यार की बाजी है, इसमें न एक की जीत कभी, या दोनों ही सब हारेंगे या दोनों जीतेंगे जीवन। जब एक ख्वाब देखा है तो ताबीरें क्यों हों जुदा जुदा, जब एक ख्वाब देखा है तो ताबीरें क्यों हों जुदा जुदा, आओ के बांट ले आपस में सब धूप अपनी अपने सावन। जब एक ख्वाब देखा है तो ताबीरें क्यों हों जुदा जुदा, आओ के बांट लें आपस में सब धूप अपनी अपने सावन। कुछ भरम मेरे तुम भी रख लो, कुछ भरम मेरे तुम भी रख लो, कुछ मैं भी सजा लूं आंखों में। कुछ भरम मेरे तुम भी रख लो, कुछ मैं भी सजा लूं आंखों में, तेरे सपने तेरे अरमां सब ख्वाब तेरे हर पागलपन। कुछ भरम मेरे तुम भी रख लो, कुछ मैं भी सजा लूं आंखों में, तेरे सपने तेरे अरमां सब ख्वाब तेरे हर पागलपन। फिर टूट के बरसे आंखों से वो अब्र के जिसमें पहले पहल, फिर टूट के बरसे आंखों से वो अब्र के जिसमें पहले पहल, यूं भीगे थे हम तुम, यूं भीगे थे हम तुम कि जिंदगी महक उठी थी गुलाब बन, फिर टूट के बरसे आंखों से वो अब्र के जिसमें पहले पहल, यूं भीगे थे हम तुम कि जिंदगी महक उठी थी गुलाब बन।
मीत जी के बाद मैं आवाहन करती हूँ अनुराग शर्मा का पिट्सबर्ग अमेरिका से। चौथे अंक में भी मैं अनुराग जी का थोड़ा सा परिचय दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि वे बिना किसी संदर्भ प्रसंग और उपसंहार के बोलते हैं, अपनी बात स्थापित करते हैं सत्य की तरह, दृढ़ता से कहते हैं जैसे सदा सत्य बोलो, सूरज पूरब में उगता है आदि आदि, कोई समीक्षा की जगह नहीं छोड़ते। यह उनकी एक अपनी अनोखी विधा है, अनोखा अंदाज है। अनुराग जी अमेरिका पिट्सबर्ग से कृपया आए और अपनी रचना कहें।
नमस्कार, एक गजल प्रस्तुत है, शीर्षक है एहसास। सब कुछ तो खो गया है, क्या पास रह गया है, तुम साथ हो ये झूठा एहसास रह गया है। फिर से कभी मिलेंगे दिल तोड़ कर गए जो, उम्मीद तो नहीं पर विश्वास रह गया है। इस दिल का हम पे एहसा एक और ही सही है, लपसी गमे जुदाई चुपचाप सह गया है। उनका भी दोष क्या जब हम थे ना उनके काबिल, उनका भी दोष क्या जब हम थे ना उनके काबिल, यह सोचकर हमारा सब रंज बह गया है। हाथों से फिसले लम्हे फिर किसको मिल सके हैं, जाती हवा का झोंका चुपके से कह गया है।
चौथे कवि सम्मेलन के प्रकल्प में एक नया अध्याय जोड़ने की बात कही थी, जिसके अंतर्गत कालजयी कविताओं और कवियों के परिचय की एक परंपरा हमने प्रारंभ की थी। हमारे इस प्रकल्प का लक्ष्य है कि हम अपने स्वर्णिम इतिहास की कालजयी कृतियों, कालजयी विभूतियों को स्वयं भी दोहराएं और आगामी पीढ़ियों को भी परिचित कराएं। प्रवासी भारतीयों के लिए तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। कवि सम्मेलन के अंतिम चरण में हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, जिनके गीत वंदे मातरम ने हर युग में भारतीय मानस में राष्ट्रीय प्रेम का एक जज्बा उत्पन्न किया है, एक भाव उत्पन्न किया है, राष्ट्र प्रेम उत्पन्न किया है। 1838 में एक परंपरागत और समृद्ध बंगाली परिवार में जन्मे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंग भाषा के प्रथम उपन्यासकार थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनकी प्रशंसा में कहा है, बंकिम के कारण ही आज बंग भाषा मात्र प्रौढ़ ही नहीं उर्वरा और सच श्यामला भी हो सकी है। सच तो ये है कि उन्हें बंगला भाषा में संकुचित करना उनकी गरिमा को कम करना होगा। वे सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय साहित्यकार थे। वे रामकृष्ण परमहंस के समकालीन और परम मित्र भी थे। 1858 में उनका काव्य संग्रह ललिता ओ मानस प्रकाशित हुआ। उनका पहला बंगला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में छपा। उसके बाद उन्होंने कपाल कुंडला, मृणालिनी, विषवृक्ष और चंद्रशेखर जैसी कृतियों की रचना की। वे बंगला पत्रिका बंगोदर्शन के संस्थापक और संपादक भी थे। उनके बनाए कार्टून का संकलन कमलाकांता 1885 में प्रकाशित हुआ था। उनका निधन अप्रैल 1894 में हुआ और उनका भगवत गीता का अनुवाद मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। 1870 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने गॉड सेव द किंग क्वीन गाना अनिवार्य कर दिया था, तब उन्होंने इसके विरोध में वंदे मातरम गीत के पहले दो छंद संस्कृत में लिखे। बाद में इसे अपने कालजयी उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। इस गीत के बारे में उन्होंने स्वयं कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारा हिंदुस्तान इस गीत से प्रेरणा लेगा। सारा देश एक सुर से यह गीत गाने लगेगा। 100 वर्षों से अधिक पुराने इस गीत को रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर ए आर रहमान तक अनेकों प्रसिद्ध संगीतकारों ने संगीत से नवाजा है। आइए सुनते हैं इसका गायन आधिकारिक धुन में।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे